एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम डैनियल मेसन की एक बहुत ही अनोखी किताब नॉर्थ वुड्स पर बात करने वाले हैं।
हाँ, बहुत ही दिलचस्प किताब है ये।
दिलचस्प इसलिए क्योंकि इसका जो मुख्य किरदार है वो कोई इंसान नहीं है
बल्कि एक घर है।
हाँ, मैसाचुसेट्स के जंगलों में बसा एक पीला घर और उसकी जमीन। और ये कहानी मतलब 300 साल से भी ज्यादा के वक्त में फैली हुई है।
ये कल्पना ही अपने आप में बहुत सुंदर है। सोचिए, अगर कोई घर अपनी कहानी सुना पाता तो वो क्या क्या बताता।
बिल्कुल, तो आज हम उसी घर की कहानी की परतों को एक एक करके खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक बेजान जगह जिंदा किरदारों की यादों से एक आत्मा बन जाती है।
हाँ, एक ऐसा गवाह जो सदियों से बस देखता आया है।
तो चलिए इस कहानी की पहली ईंट रखते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है?
कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी में एक युवा प्रेमी जोड़े से,
जो अपने समाज से भाग रहे थे, है ना?
हाँ, उनका जो कट्टरपंथी प्यूरिटन समाज था उसके नियमों से भागकर वो इस वीरान जंगल में एक तरह से पनाह लेते हैं।
मकसद था बस प्यार और आजादी।
बिल्कुल, वो अपने हाथों से एक छोटा सा कैबिन बनाते हैं, जमीन साफ करते हैं और अपने साथ लाए सेब के कुछ बीज बोते हैं।
एक नई शुरुआत।
लेकिन मेसन कहानियों को इतना सीधा नहीं रखते।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती।
बच्चे को जन्म देते हुए उस युवती की मौत हो जाती है
और उसका साथी
वो दुख में डूबकर जंगलों में कहीं खो जाता है। तो वो चले जाते हैं पर अपनी एक निशानी छोड़ जाते हैं,
वो घर और वो सेब का पौधा।
हाँ, जो उनके प्यार का भी प्रतीक था और उनके दुख का भी। तो उस जगह के डीएनए में शुरू से ही ये दोहरापन बस जाता है।
यानी उस जगह के नींव में ही प्यार और बिछोह का एक गहरा एहसास घुल गया था। अच्छा, अब एक सदी बाद कहानी आगे बढ़ती है।
हाँ, और एक बिल्कुल अलग तरह का जुनून लेके एक नया किरदार आता है, चार्ल्स ऑसगुड,
एक पूर्व सैनिक।
हाँ, और वो प्रकृति को एक दुश्मन की तरह देखता है जिसे जीतना है, जिसे अपने काबू में करना है।
तो उसे भी वो सेब का पेड़ मिलता है?
उसे सेब का वही अकेला पेड़ मिलता है और वो पेड़ उसके लिए एक जुनून बन जाता है, एक ऑब्सेशन।
वो क्या करना चाहता था उस पेड़ के साथ?
वो अपनी पूरी जिंदगी एक आदर्श सेब की किस्म बनाने में लगा देता है, एक ऐसा उत्तम सेब जिसे वो ऑसगुड वंडर का नाम देता है।
उसका नजरिया पूरी तरह से वैज्ञानिक था।
बिल्कुल, वो प्रकृति को अपने हिसाब से ढालना चाहता था और हमें ये सब उसकी डायरी से पता चलता है।
हाँ, उसकी डायरी में सिर्फ सेब की ग्राफ्टिंग, मौसम का हाल, इन सब का जिक्र है। एकदम सटीक, भावनाओं से रहित भाषा।
लेकिन अपनी जुड़वा बेटियों एलिस और मैरी का उनका जिक्र तक नहीं है।
तो वो एक मशहूर बागबान तो बन जाता है लेकिन अपने ही घर में एक अजनबी।
हाँ, अपने काम में इतना खो जाता है कि अपने सबसे करीबी रिश्तों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है।
और यही भावनात्मक खालीपन हमें कहानी के सबसे मार्मिक और गहरे हिस्से की तरफ ले जाता है, ऑसगुड बहनों की कहानी।
हाँ, एलिस और मैरी की। ये वाकई इस उपन्यास का दिल है।
पिता की मौत के बाद बाहरी दुनिया के लिए तो वो बस दो अकेली बहनें थीं, कुछ हद तक अजीब, जो समाज से कटकर रहती थीं।
लेकिन उस घर की चार दीवारी के अंदर एक पूरी दुनिया छिपी हुई थी, एक गहरा राज था।
और ये राज खुलता है दशकों बाद एलिस की कविताओं और खतों से।
हाँ, तब पता चलता है कि वे सिर्फ बहनें नहीं थीं, वे एक दूसरे की साथी थीं, प्रेमिकाएं थीं।
तो उन्होंने उस घर को अपना एक अभयारण्य, एक सैंक्चुरी बना लिया था।
बिल्कुल, जहां उनका प्यार समाज की नजरों से बचकर पनप सकता था। वो घर जो पहले एक भागे हुए जोड़े ने बनाया था,
अब एक छिपे हुए प्यार को पनाह दे रहा था।
और लेखक ये सब सीधे सीधे नहीं कहते। नहीं, हमें ये एलिस के काव्यात्मक भाषा से पता चलता है। वो अपनी कविताओं में एक जंगली बिल्ली का जिक्र करती है जो पास के जंगल में रहती थी,
आजाद लेकिन हमेशा छिपी हुई।
हाँ, वो बिल्ली एक तरह से उन दोनों बहनों की आत्मा का प्रतीक बन जाती है।
लेकिन हर कहानी में एक दुखद मोड़ भी होता है।
हाँ, एलिस बहुत संवेदनशील थी। उसे अक्सर घर में पुरानी आत्माओं के होने का एहसास होता था। वो उस जगह के अतीत का बोझ महसूस करती थी
और शायद वो ये सब और नहीं सह पाई।
शायद एक सर्दियों में वो जंगल में जाकर अपनी जान दे देती है और मैरी दशकों तक उस घर में अकेली रहती है, अपनी और एलिस की यादों की अकेली पहरेदार बनकर।
तो उनका वो अनकहा प्यार और मैरी का अकेलापन वो उस घर की दीवारों में हमेशा के लिए बस जाता है,
एक खामोश गूंज की तरह।
और फिर समय आगे बढ़ता है, घर के मालिक बदलते हैं और हर कोई उस जगह को एक अलग नजर से देखता है।
बिल्कुल, एक चित्रकार आता है जो घर के खंडर हो चुके सौंदर्य में कला देखता है, उसे एक रोमांटिक चीज की तरह देखता है।
हाँ, और फिर एक धोखेबाज तांत्रिक आता है जो उसी दुख को बेचकर पैसा कमाना चाहता है।
और फिर एक और हिंसक परत जुड़ती है कहानी में।
हाँ, जब एक आदमी अपनी पत्नी की हत्या करके उसे घर के तहखाने में दफना देता है तो घर अब एक गुनाह छुपाने की जगह भी बन जाता है।
ये हिस्सा बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि घर वही रहता है लेकिन उसे देखने वाली हर आंख उसमें अपनी कहानी का अक्स देखती है।
वो एक कैनवस की तरह है जिस पर हर आने वाला अपनी नियत का रंग पोत जाता है।
लेकिन इन सब में सबसे अनोखा किरदार मेरे ख्याल से रॉबर्ट का है।
हाँ, रॉबर्ट एक नौजवान जिसे सिज़ोफ्रेनिया था।
दुनिया की नजर में वो पागल था लेकिन शायद वही उस घर की आत्मा को सबसे बेहतर समझता था।
सही कहा, उसके लिए अतीत और वर्तमान के बीच की रेखा मिटी हुई थी।
लेखक यहाँ सिज़ोफ्रेनिया को सिर्फ एक बीमारी की तरह नहीं दिखाते हैं ना,
वो इसे एक तरह की पारदर्शिता के रूप में पेश करते हैं।
हाँ, एक ऐसी हालत जहाँ समय की दीवारें गिर जाती हैं। वो एलिस की आत्मा से बातें करता, उस जंगली बिल्ली के भूत को देखता।
वो उन सभी आवाजों को सुनता था जो घर की दीवारों में कैद थी।
मनोचिकित्सक के नोट्स में उसकी बातें दर्ज हैं जिन्हें पढ़कर लगता है कि जिसे समाज बीमारी कह रहा था वो असल में उस जगह की यादों को महसूस करने की एक अनोखी क्षमता थी।
तो वो उस घर का सबसे सच्चा गवाह था।
बिल्कुल, क्योंकि वो समय की परतों के आर पार देख सकता था।
और ये किताब सिर्फ इंसानों की कहानी पर ही नहीं रुकती। मेसन हमें एक कदम और पीछे ले जाते हैं और प्रकृति की कहानी दिखाते हैं।
हाँ, जैसे उस कीड़े की कहानी जो सदियों से उस घर के लकड़ी के शहतीरों में रह रहा है,
या फिर वो बीमारी जिसने जंगल के शाहबलूत मतलब चेस्टनट के विशाल पेड़ों को खत्म कर दिया।
सच कहूं तो ये हिस्सा पढ़कर मैं एक पल के लिए रुक गई थी। हम अपने छोटे छोटे दुखों में इतने उलझे रहते हैं
और हमारे चारों ओर प्रकृति में कितनी बड़ी त्रासदियां चुपचाप घट जाती हैं,
एहसास तक नहीं होता।
ये हमें हमारी जगह दिखाता है। हम कहानी के केंद्र में नहीं है बल्कि कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है।
और अंत में कहानी आज के समय में पहुंचती है।
हाँ, जहाँ अनास्टासिया नाम की एक वनस्पति विज्ञान की प्रोफेसर उस घर में रहने आती है।
वो एक तरह से हमारी यानी पाठक की प्रतिनिधि है जो इन सभी बिखरी हुई कहानियों के धागों को एक साथ जोड़ती है।
वो एक जासूस की तरह काम करती है। एक वैज्ञानिक होने के नाते वो सबूत खोजती है।
हाँ, उसे घर में दीवारों के पीछे छिपे दस्तावेज मिलते हैं, चार्ल्स ऑसगुड की डायरी
और सबसे जरूरी एलिस की वो कविताएं और खत
जो मैरी के लिए उसके प्यार का सबूत थी। वो उन आवाजों को एक नाम देती है जो अब तक अनसुनी थी।
वो समझ जाती है कि ये घर एक जीवित संग्रहालय है, एक ऐसा आर्काइव जहां हर जिंदगी की गूंज मौजूद है।
और वो उस घर की यादों की नई संरक्षक बन जाती है। बिल्कुल, तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो ये उपन्यास हमें क्या सिखाता है?
मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि समय सीधा नहीं चलता।
बिल्कुल, वो एक चक्र की तरह है। अतीत कभी मरता नहीं, वो बस वर्तमान में मौजूद रहता है।
दूसरा, ये प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते पर एक गहरा चिंतन है। हम उसके मालिक नहीं, सिर्फ उसका एक हिस्सा हैं।
और अंत में, जंगल और समय हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं।
और सबसे जरूरी बात, ये उपन्यास उन कहानियों को आवाज देता है जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई।
उन लोगों की कहानियां जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था,
चाहे वो अपने प्यार के लिए भागे प्रेमी हो या दो औरतों का छिपा हुआ प्यार,
या रॉबर्ट की अनोखी दुनिया जिसे किसी ने समझने की कोशिश नहीं की।
ये उपन्यास कहता है कि हर जिंदगी मायने रखती है, चाहे वो कितनी भी खामोशी से क्यों न जी गई हो।
वे हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम किसी पुरानी जगह पर कदम रखते हैं तो हम सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि एक जिंदा कहानी पर कदम रख रहे होते हैं।
ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी जगह खाली नहीं होती, वो हमेशा उन लोगों की कहानियों, एहसासों और यादों से भरी होती है जो हमसे पहले वहां रहे।
और ये भी कि हम सब एक बहुत बड़ी सदियों पुरानी कहानी का अटूट हिस्सा हैं जो हमसे पहले भी थी और हमारे बाद भी हमेशा रहेगी।
एक और अनूठी कृति के साथ ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।